रोज भोजन की सामग्री अपने सामने आती है उस पर भी अपना अंकुश होना चाहिए। चार चीजें ही खाऊं भले ही दस सामने आ गई हैं। ये भोगोपभोग की सामग्री का परिमाण, उपभोग की वस्तु वो कहलाती है जिसको कि हम बार बार उपयोग में करके और रख देते हैं, फिर उपयोग में ले लेते हैं, जैसे कपड़े इत्यादि। और भोग की सामग्री वो कहलाती जिसको एक बार खाया और फिर दूसरी बार थोड़ी खाया जा सकता, वो तो खा लिया खत्म। वो तो खाने पीने की आहार सामग्री भोग की सामग्री कहलाएगी, पहनने ओढ़ने के वस्त्र उपभोग सामग्री कहलाएगी। इसका कोई लिमिटेशन है? एकाध दिन ऐसा है जिसमें हम यही कहें कि आज तो दो ही जोड़ी कपड़े बदलेंगे, बार बार नहीं बदलेंगे, आज तो हम इतनी ही चीजें भोजन में ग्रहण करेंगे? ये इससे करने से क्या होगा, हमारे अंदर एक संतोष भावना उत्पन्न होगी श्रावक के अंदर। और इतना ही नहीं, विपरीत परिस्थितियों में, अभाव में, उन चीजों के नहीं होने पर, हमने तो कई बार ऐसा अभ्यास कर लिया, उन चीजों के नहीं मिलने पर कोई बात नहीं, आज ये चीज नहीं है चलेगा, हम तो कई बार इस चीज को त्याग करके देख चुके हैं, हमारा उसके बिना भी चल जाता है। नहीं तो हम लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं इस सारी प्रक्रिया के कि एक दिन भी उस चीज के अभाव में हमें तकलीफ होने लगती है, और उसके सद्भाव में भी आकुलता ही बनी रहती है। उस आकुलता से बचने के लिए ये प्रक्रिया शायद आचार्यों ने रखी है। इस प्रक्रिया को हम बहुत गौर से समझें, हमारा विश्वास इससे बढ़ेगा, और विश्वास की रक्षा करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे अपन को मालूम पड़ जाए, ये बाह्य वेश भी कई बार हमारे और दूसरे के विश्वास की रक्षा करता है। ये बाह्य में ग्रहण किए गए व्रत नियम इत्यादि भी हमारे और दूसरे के विश्वास की रक्षा करते हैं। ये प्रचलित कहानी है, सबको मालूम होगा कि एक डाकू कैसा था, वो अपने पूरे जितने भी उसके ग्रोह के लोग थे उनको तो भेज देता था डाका डालने, और खुद अपनी कुटिया में और साधु बन के बैठा रहता था, है ना, कहीं पढ़ा होगा आपने। तो क्या हुआ कि उसके जो ग्रोह के लोग थे, उसने एक दिन एक व्यापारी को लूटा, वो व्यापारी और व्यापारियों को लूटते देख करके एक उसमें से भागा, उसके पास बहुत पोटली थी सामान की, भाग करके उसने देखा कि वो कुटिया है उसमें चलना चाहिए, हैं? उसमें देखा तो एक बाबा जी बैठे, उसने कहा ये अच्छी जगह आ गए अपन, सेफ एकदम। और उसने कहा बाबा जी मुझे डाकू ने घेर लिया है, आप मेरी रक्षा करो, मेरा ये सामान रख लो, फिर मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा, अभी तो मैं भाग रहा हूं। तो उसने कहा रख दो वहां कोने में, कोने में रखवा लिया पूरा पूरा जो भी हीरे जवाहरात थे उसके। और वो व्यापारी तो भाग गया कि जब डाकू भाग जाएंगे तब आके ले जाएंगे। तो अंधेरे में शाम को, और वो आया, आकर के देखा उसने उस कुटिया में, तो देखा कि वो जो बाबा जी बने थे वो तो अब बन गए हैं डाकुओं के सरदार, बने बैठे वो ही तो हैं, और ये जिनने लूटा था वो सब यहीं तो बैठे हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अपना तो सब लूट गया समझ लो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी उस व्यापारी पर, व्यापारी से उसने कहा घबराओ मत, ये सब डाकू तुम्हें लूटने वाले हैं और मैं भी इनका सरदार हूं, लेकिन तुम जिसके पास सामान रख के गए हो वो साधु था ना, वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है वहां पर, उठा लो अपना। व्यापारी उठा के चला जाता है, बाकी ग्रोह के लोग उस डाकू से पूछते हैं, सरदार से, कि इतना सामान आया और तुम्हारे इस तरह उसको जाने दिया। तो मालूम उनने क्या जवाब दिया था, उसने डाकू के पास नहीं रखा था, उसने साधु के पास रखा था, और उसका सामान वापस मिलना चाहिए। मैं साधु के प्रति उसके विश्वास में नहीं तो कमी आ जाएगी कि मैंने तो साधु समझ के रखा था और ये तो कोई और निकला। कई बार हमारे व्रत, हमारा बाह्य वेश हमारे जीवन को संभालने में मदद करने लगता है। इसलिए कभी कभी इस तरह के व्रत लेकर के भी अगर खाने की आकांक्षा हो भी जाएगी तब भी नहीं नहीं मैंने तो आज इस तरह सोच लिया है, आज मैं इन चीजों को नहीं ग्रहण करूंगा, अन्यथा ऐसा करने से दूसरे का विश्वास भी टूटेगा और मेरा आत्मविश्वास भी, मेरा संकल्प भी कमती पड़ जाएगा। शायद ये शिक्षा देने के लिए भी आचार्य भगवंतों ने हमें शायद इस तरह के व्रतों में बांधने की, कई बार ऐसा लगता है कि इन व्रतों में तो हम बंध जाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, आज ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही। कोई भी जीवन में संकल्प लेने के लिए, व्रत नियम लेने के लिए सहसा तैयार नहीं होता, अरे हमसे नहीं होगा, टूट जाएगा तो क्या करेंगे। हाँ, सप्त व्यसन का त्याग लेने में भी, संकल्प लेने में भी पसीना आने लगा। बताइए, जिस जैन कुल में जन्म लेते ही व्यसन का त्याग होना चाहिए, उसका संकल्प दिलाना चाहिए 8 वर्ष में बेटे को, जैसे ही 8 वर्ष का हो और मंदिर में ले जाकर उसे गृहस्थ के व्रत दिलाना चाहिए। 8 जो मूल गुण हैं, जिनमें 3 मकार का त्याग, सारे व्यसन का त्याग हो जाता है, वो 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को माता पिता के द्वारा दिलाए जाने चाहिए। आज तो बहुत बड़ी उम्र में भी, क्यों, ये हमें संभाल लेते हैं, ये उस समय के दिलाए गए छोटे छोटे से संकल्प हमारे पूरे जीवन को अच्छा बनने में मदद करते हैं, बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि मेरा संकल्प है, मैंने बचपन में ये संकल्प कर लिया था कि मैं मद मदी मांस नहीं खाऊंगा। जब जाने लगे थे गांधी जी विदेश यात्रा पर, तो माँ ने क्या कहा था कि ये 2 संकल्प हमेशा ध्यान में रखना, तुम वहां जाकर के शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। आज क्या हम अपने जीवन में और अपनी आने वाली पीढ़ी को कोई संकल्प दिला रहे हैं कि नहीं? अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में सिर्फ विचार ही आवश्यक नहीं है, विचार तो हमने किया, लेकिन हम अब यह भी विचार करें कि हमारे जीवन में कोई संकल्प लिया है या नहीं लिया है। संकल्प से हमारा जीवन कई बार पतित होने से बच जाता है, और इतने ही नहीं, हमारे जीवन में उस संकल्प लेने से संतोष भी आ जाता है।